लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि सभी पीड़ितों को जीवन का रास्ता मिले तथा वे यीशु के पवित्रतम हृदय के स्पर्श का अनुभव प्राप्त कर सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है प्रेरित संत पेत्रुस एवं संत पौलुस के महापर्व पर संत पापा फ्रांसिस के उपदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने 29 जून को कैथोलिक कलीसिया के दो महान संरक्षक प्रेरित संत पेत्रुस एवं संत पौलुस के पर्व दिवस के अवसर पर समारोही ख्रिस्त त्याग अर्पित किया। उन्होंने प्रवचन में कहा,
La festa dei due apostoli di questa città vorrei condividere con voi due parole chiave, unità e profezia.
इस शहर के दो प्रेरितों के पर्व दिवस पर मैं आप लोगों के साथ दो मूल शब्दों पर चिंतन करना चाहता हूँ, एकता एवं भविष्यवाणी। हम एक साथ दो व्यक्तियों का पर्व मना रहे हैं जो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। पेत्रुस एक मछुआरा था जिसका दिनचर्या नाव खेने और जाल के बीच बीतता था। वहीं पौलुस एक सुसंस्कृत फरीसी था जो सभागृहों में शिक्षा देता था। जब वे मिशन में गए तब पेत्रुस ने यहूदियों का मन परिवर्तन किया जबकि पौलुस ने गैर यहूदियों का, और जब उनके रास्ते एक दूसरे के रास्ते को काट रहे थे तब उन्होंने विरोध किया, जैसा कि पौलुस अपने एक पत्र में इसका बिना शर्म जिक्र करते हैं। संक्षेप में, वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे किंतु हम उन्हें भाई की तरह पाते हैं, एक ही परिवार के सदस्यों के समान एकता में, जहां लोग झगड़ते हैं किंतु हमेशा एक दूसरे को प्यार करते हैं। परिवार के सदस्य के रूप में उनके बीच जो संबंध था वह स्वाभाविक नहीं था बल्कि प्रभु की ओर से था, जिन्होंने हमें पसंद करने के लिए नहीं बल्कि प्यार करने की आज्ञा दी है। वे ही हैं जो हमें बिना एक रूपता दिए एक साथ लाते हैं। संत पापा ने पाठ पर चिंतन करते हुए कहा, आज का पहला पाठ हमें इस एकता के उद्गम के पास लाता है। यह बतलाता है कि कलीसिया जो अभी अभी जन्मी थी वह एक विकट परिस्थिति से गुजर रही थी। हेरोद ने हिंसक अत्याचार शुरू कर दिए थे, प्रेरित याकूब को मार डाला गया था और इसी समय में पेत्रुस को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। समुदाय को लगा कि उनका कत्ल हो गया है। हर कोई अपने जीवन के लिए भयभीत था, फिर भी इस कठिन समय में कोई नहीं भागा। किसी ने अपनी चमड़ी बचाने की कोशिश नहीं की, किसी ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा बल्कि सभी एक साथ प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना से उन्हें साहस मिला, प्रार्थना से एकता बढ़ी जो किसी भी खतरे से अधिक शक्तिशाली थी। सुसमाचार पाठ बतलाता है कि जब पेत्रुस पर इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था तब कलीसिया आग्रह के साथ उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती रही। संत पापा ने कहा कि एकता एक ऐसा सिद्धांत है जो प्रार्थना के द्वारा सक्रिय होता है, क्योंकि प्रार्थना पौत्र आत्मा को कार्य करने देती है, आशा का द्वार खोलती है, दूरी कम कर देती है ताकि हम एक साथ कठिनाई का सामना कर सकें। संत पापा ने कहा कि हम एक दूसरी चीज पर गौर करें। उस नाटकीय परिस्थिति में कोई भी अत्याचार और हेरोद की बुराई की शिकायत नहीं कर रहा था। ख्रिस्तियों के लिए यह बेकार और उबाव वाली बात थी कि वे संसार और समाज की शिकायत करें कि यह ठीक नहीं चल रहा है। शिकायतें कुछ नहीं बदल सकती हैं। उन ख्रिस्तियों ने दोष नहीं दिया बल्कि प्रार्थना की। उस समुदाय में कोई नहीं कह रहा था कि यदि पेत्रुस अधिक सतर्क होता तो हम इस स्थिति में नहीं होते। उनके बारे कोई बात नहीं कर रहा था किंतु सभी उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। वे उनके पीठ पीछे बात नहीं कर रहे थे किंतु ईश्वर में लीन थे। आज हम अपने आप से पूछें, क्या हम प्रार्थना के द्वारा एकता को बनाए रख सकते हैं? क्या हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या होगा यदि हम अधिक प्रार्थना करेंगे और कम बड़बड़ाएंगे? संत पापा ने कहा कि वही होगा जो जेल में पेत्रुस के साथ हुआ। बहुत सारे द्वार जो अलग करते हैं खुल जाएंगे, कई बेड़ियां जो जकड़ कर रखते हैं गिर जाएंगे। तब संत पापा ने एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने पर जोर देते हुए कहा, उस कृपा की याचना करें कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीख सकें। संत पौलुस ख्रिस्तियों का आह्वान करते हैं कि वे सभी के लिए प्रार्थना करें, और सबसे बढ़कर उन लोगों के लिए जो प्रशासन में कार्य करते हैं। संत पापा ने कहा कि यह एक जिम्मेदारी है जिसको प्रभु हमें सौंपते हैं, कि हम उसे पूरा करते हैं या सिर्फ उस पर बहस करते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब उन लोगों की भी याद करें जो हमारे समान नहीं सोचते, जिन्होंने हमसे अपना द्वार बंद कर लिया है और जो क्षमा करने में कठिनाई महसूस करते हैं। प्रार्थना ही है जो बेड़ियों को तोड़ सकती है और एकता की राह पर अग्रसर करती है। तत्पश्चात संत पापा ने पालियों के महत्व के बारे बतलाते हुए कहा, आज पालियों की आशीष की जाती है जिसे कार्डिनल मंडली के डीन और पिछले साल नियुक्त महाधर्मदर्शन को प्रदान की जाती है। पालियों भेड़ों और उनके चरवाहों की एकता की याद दिलाती है, जो यीशु की तरह भेड़ों को अपने कंधे पर उठा लेते हैं जिससे कि वे कभी अलग ना हो जाएं। कुस्तुंतुनिया की कलीसिया के साथ कैथोलिक कलीसिया के संबंध पर प्रकाश डालते हुए संत पापा ने कहा, आज एक सुंदर परंपरा के अनुसार कुस्तुंतुनिया के प्राधिधर्मदर्श के साथ खास रूप से मुलाकात की जाती है। पेत्रुस और अंद्रेस दोनों भाई थे, और जब कभी संभव है हम उनके पर्वों में भ्रातृत्व मुलाकात के रूप में शामिल होते हैं, न केवल औपचारिकता के लिए बल्कि उस लक्ष्य की ओर एक साथ चलने के लिए जिसको प्रभु दिखलाते हैं, अर्थात पूर्ण एकता की ओर। संत पापा के प्रवचन में आज का दूसरा शब्द है भविष्यवाणी। हमारे प्रेरितों को यीशु प्रेरित करते हैं। पेत्रुस उन्हें यह सवाल करते हुए सुनते हैं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? उस समय से वे समझते हैं कि यीशु कोई आम विचार नहीं चाहते, बल्कि व्यक्तिगत रूप से चुने जाने की बात करते हैं। पौलुस का जीवन भी उस समय बदला जब यीशु ने उन्हें प्रेरित किया, साउलुस साउलुस तुम मुझे क्यों सताते हो? प्रभु ने उन्हें अंदर से हिला दिया था, और उससे भी अधिक दमिश्क के रास्ते पर उनका धर्मी और अच्छे व्यक्ति होने के मनोभाव को गिरा दिया था। इस तरह घमंडी साउलुस अब पौलुस बन गया था, जिसका अर्थ होता है छोटा। संत पापा ने कहा कि जीवन की इन प्रेरणाओं और प्रकाशनाओं के साथ भविष्यवाणी जुड़ी है, तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और पौलुस से वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं और इसराइलों के बीच मेरे नाम का प्रचार करेगा। अतः भविष्यवाणी आती है जब हम अपने आप को प्रभु से प्रेरित होने देते हैं, ना कि जब हम अपने आप से चीजों का हल करते और उन्हें शांत कर देते हैं। जब सुसमाचार निश्चितता को बदल देता है तब भविष्यवाणी आती है, और केवल वे ही लोग जो ईश्वर के विस्मय के लिए अपने आप को खोलते हैं नबी बनते हैं। यहाँ पेत्रुस और पौलुस नबी के रूप में भविष्यवाणी करते हैं। पेत्रुस घोषित करता है कि यीशु मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। पौलुस अपने जीवन के अंतिम समय को पहले ही जान जाता है। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिससे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। संत पापा ने विश्वासों को संबोधित कर कहा कि आज हमें भविष्यवाणी की आवश्यकता है, सच्ची भविष्यवाणी की, उन भाषणों की नहीं जो असंभव चीजों के वादे करते बल्कि साक्ष्य देते हैं कि सुसमाचार संभव है। चमत्कारिक प्रदर्शन की नहीं, किंतु उस जीवन की जरूरत है जो ईश्वर के प्रेम के चमत्कार को प्रकट करता है। सत्ता की नहीं बल्कि सामंजस्य की आवश्यकता है, शब्दों की नहीं पर प्रार्थना की, घोषणा की नहीं किंतु सेवा की, सिद्धांत नहीं साक्ष्य की। हमें धनी नहीं होना है किंतु गरीबों को प्यार करने की जरूरत है, अपने लिए कमाने की नहीं पर दूसरों के लिए खर्च करने की, दुनिया की आम राय के लिए नहीं बल्कि उस आनंद के लिए जिसको दुनिया नहीं दे सकती, कुशल प्रेरित की योजना की नहीं बल्कि उस चरवाहा की जो अपना जीवन अर्पित करता है, वही ईश्वर के प्रेम में है। इस प्रकार पेत्रुस और पौलुस ने यीशु के प्रेमियों की तरह उनकी घोषणा की। क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले पेत्रुस ने अपने बारे नहीं सोचा, बल्कि अपने प्रभु की याद की और अपने आप को उनकी तरह मरने के अयोग्य समझा और क्रूस पर उल्टा लटकाए जाने की मांग की। हत्या कर दिए जाने के पूर्व पौलुस ने अपने जीवन को अर्पित करने के लिए सोचा और उन्होंने लिखा कि वे अपने आप को अर्पित कर देना चाहते हैं। यही भविष्यवाणी है और जिसने इतिहास को बदल दिया। संत पापा ने कहा, यीशु ने पेत्रुस से भविष्यवाणी की थी, तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और उस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यह भविष्यवाणी हमारे लिए भी है। यह बाइबल की अंतिम पुस्तिका में मिलती है, एक सफेद पत्र जिस पर एक नया नाम अंकित होगा। जैसा कि प्रभु ने सिमोन को पेत्रुस में बदल दिया, हम सभी को बुलाते हैं कि वे हमें जीवित पत्र बना सकें, जिस पर वे एक नवीकृत कलीसिया और मानवता का निर्माण कर सकें। संत पापा ने कहा कि कलीसिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा एकता को भंग करते और भविष्यवाणी को बंद कर देते हैं, किंतु प्रभु हम पर भरोसा करते हैं और हमसे मांग करते हैं कि क्या तुम एकता के निर्माता बनोगे, क्या तुम इस पृथ्वी पर मेरे स्वर्ग की भविष्यवाणी करोगे। आइए हम अपने आप को प्रभु द्वारा प्रेरित होने दें और उनसे यह कहने का साहस करें, जी हाँ, मैं यही चाहता हूँ।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार 29 जून को संत पेत्रुस और पौलुस के पर्व दिवस पर संत पेत्रुस महागिरजाघर में पवित्र मिसा का अनुष्ठान किया और दोपहर को संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में उपस्थित भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना से पहले संत पापा ने उपस्थित भक्त समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, आज हम रोम शहर के संरक्षक संत पेत्रुस और संत पौलुस का पर्व दिवस मना रहे हैं। हम उस पवित्र स्थान पर प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए हैं जहां संत पेत्रुस को बंदी बनाया गया, मार डाला गया और दफनाया गया। संत पापा ने कहा, संत पेत्रुस की मृत्यु के कई साल पहले राजा हेरोद ने उसे बंदी बनाया था और मारने की तैयारी में था। इसे जानकर वहां के विश्वासी एकत्रित होकर पेत्रुस की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। रात्रि में ईश्वर का दूत आकर बंदी गृह से पेत्रुस को आजाद कर दिया। वर्षों बाद संत पेत्रुस रोम में भी बंदी बनाए गए। विश्वासियों ने मिलकर उनके लिए प्रार्थना की, परंतु इस बार स्वर्ग के दूत ने आकर उसे बंदीगृह से आजाद नहीं किया और पेत्रुस को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। संत पापा ने कहा कि पहले पेत्रुस को दूत ने बचाया, परंतु इस बार क्यों नहीं बचाया। संत पापा ने कहा, क्योंकि पेत्रुस के जीवन में एक रास्ता था जो हमारे जीवन की राह को रोशन कर सकता है। प्रभु ने उसे कई अनुग्रह प्रदान किए और उसे बुराई से मुक्त किया। वे हमारे साथ भी ऐसा ही करते हैं। दरअसल हम अक्सर जरूरत के समय ही उनके पास जाते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे भविष्य को जानते हैं। वे हमारी समस्याओं से ऊपर उठने और आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रभु हमें अपनी समस्याओं के साथ अपने जीवन को भी सौंपने के लिए कहते हैं। प्रभु हमें सबसे बड़ी कृपा दे सकते हैं, जीवन देने की कृपा। संत पापा ने कहा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जीवन को एक उपहार बनाना है और यह सभी के लिए लागू होता है। बच्चों के लिए माता पिता अपने जीवन का उपहार देते हैं और बुजुर्ग माता पिता के लिए बच्चे अपना जीवन का उपहार देते हैं। यह धर्म संघियों और लोक धर्मियों के लिए हर जगह, घर पर या कार्यस्थल पर भी लागू होता है। ईश्वर चाहते हैं कि हम इस उपहार में बढ़ें। संत पापा ने कहा कि संत पेत्रुस जेल से रिहा होने के कारण नहीं, बल्कि इस भूमि पर अपनी जान देने के कारण एक नायक बन गए। क्रूस पर लटकाया गया यह स्थान, उनकी कुर्बानी अब इस जगह को आशा के सुंदर स्थान में बदल दिया है, जहां हम अपने आप को पाते हैं। आइए हम प्रभु से जीवन उपहार की कृपा मांगें। अंत में संत पापा ने कहा कि माता मरियम ने खुद को ईश्वर के सिपुर्द कर दिया। वे हमें प्रतिदिन अपने आप को प्रभु के हवाले करने में हमारी मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने देवदूत प्रार्थना का पाठ किया और सभी विश्वासियों को अपना आशीर्वाद दिया। इसी दिन संत पापा ने दो ट्वीट किया। पहले ट्वीट में संत पापा ने लिखा, प्रेरित पेत्रुस और पौलुस के त्योहार पर मैं दो प्रमुख शब्दों को साझा करना चाहूँगा, वो है एकता और भविष्यवाणी। प्रभु हम प्रत्येक से पूछते हैं, क्या तुम एकता के निर्माता बनना चाहते हो? क्या तुम पृथ्वी पर मेरे भविष्यवक्ता बनना चाहते हो? आइए हम हिम्मत के साथ इसका जवाब दें, हाँ मैं बनना चाहता हूँ। और संत पापा ने दूसरे ट्वीट में लिखा, जिस तरह प्रभु ने सिमोन को पेत्रुस यानी पत्थर में बदल दिया, उसी तरह उसने हम में से हर एक को जीवित पत्थर बनने के लिए बुलाया है, जिससे हम कलीसिया को नवीनीकृत और नए सिरे से मानवता का निर्माण कर सकें। और संत पापा फ्रांसिस ने चौथे ब्रुसेल्स सम्मेलन में मध्य पूर्व सीरिया उसके भविष्य के लिए समर्थन करने हेतु दानदाता देशों से अपना समर्थन देने की अपील की। संत पापा ने रविवार को संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में उपस्थित यात्रियों और विश्वासियों के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के उपरांत कहा, हम इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए प्रार्थना करें ताकि यह सीरियाई लोगों और आसपास के लोगों की नाटकीय स्थिति में सुधार ला सके, खास कर लेबनान के गंभीर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संकट को इस महामारी ने और भी मुश्किल बना दिया है। संत पापा ने उन अनगिनत बच्चों का भी उल्लेख किया जो भूख से पीड़ित हैं। संत पापा ने राजनीतिक नेताओं से शांति की तलाश करने का आग्रह किया। ब्रुसेल्स दानदाता प्रतिज्ञा सम्मेलन 30 जून मंगलवार को ऑनलाइन होगा। फंडिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी यूरोपीय संघ द्वारा की जा रही है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सह अध्यक्षता की जा रही है। इसमें संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों के प्रमुख भी भाग ले रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने युद्धग्रस्त यमन के लोगों और पश्चिमी यूक्रेन में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए भी अपनी प्रार्थना और निकटता को व्यक्त किया। संत पापा ने सभी विश्वासियों से यमन और यूक्रेन के लोगों के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किया। संत पापा ने कहा, मैं आपको यमन के लोगों के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित करता हूँ, विशेष रूप से बच्चों के लिए जो गंभीर मानवीय संकट के कारण पीड़ित हैं। यमन में 5 साल से गृह युद्ध अभी भी जारी है। यूनिसेफ ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि देश में कोविड-19 महामारी के कारण लाखों बच्चे भुखमरी का सामना कर सकते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने पश्चिमी यूक्रेन में लोगों के लिए प्रार्थना करने की अपील की, जहां मूसलाधार बारिश के कारण भयानक बाढ़ आई। संत पापा ने प्रभु से प्रार्थना की कि उन्हें इस तकलीफ को सहने की शक्ति मिले, देश के लोग बाढ़ में फंसे अपने भाई बहनों की मदद करने हेतु आगे आए। बाढ़ में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग अपने घरों को छोड़ सुरक्षित स्थानों में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आसपास के इलाकों से कई गांव कट गए हैं। प्रधानमंत्री डेनिस शमगल ने इस सप्ताह के शुरू में इन क्षेत्रों का दौरा किया। 5 क्षेत्रों की स्थिति चिंताजनक है। इवानो फ्रेंकविस क्षेत्र को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह की बाढ़ आखिरी बार 2018 में भी आई थी। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।